नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत हो गई है। जापान की नारा सिटी में वह भाषण दे रहे थे और इसी दौरान वह गोली लगने के कारण गिर गए थे। हालांकि बाद में इसकी पुष्टि हो गई कि उन्हें गोली मारी गई है। जापान के अधिकारियों ने शिंजो आबे के निधन की पुष्टि की है। गोली उनके सीने में मारी गई थी। पीएम मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वह एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। शिंजो आबे के साथ मेरा जुड़ाव कई साल पुराना है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें जानता था और मेरे पीएम बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया, पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर के सिलसिले में फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा कि ये बेल सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में है, किसी अन्य मामले में नहीं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी वह कोई ट्वीट नहीं करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतरिम जमानत सीतापुर की दिनांक 1 जून 2022 की प्राथमिकी के संदर्भ में है, न कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में। याचिकाकर्ता बैंगलोर या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि उसने प्राथमिकी में जांच पर रोक नहीं लगाई और अंतरिम राहत उसके खिलाफ लंबित किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होती। प्राथमिकी रद्द करने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देते हुए जुबैर द्वारा दायर की गई एसएलपी पर सुनवाई कर रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद शर्मा के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें ऐसा करना होगा तो वह खुलेआम करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही राज्य से हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि उनका जेपी नड्डा से पुराना सामाजिक और पारिवारिक नाता है। हम दोनों हिमाचल प्रदेश से हैं और दोनों ने ही एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे राज्य और मेरे विश्वविद्यालय से आने वाला कोई व्यक्ति सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद आनंद शर्मा ने कहा, अगर मुझे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना होगा तो मेरे पास उनसे मिलने के सारे अधिकार हैं। मेरे लिए वे सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है, इससे कोई राजनीतिक महत्व नहीं जुड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शनिवार को कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी तथा देश के प्रथम नागरिक के चयन के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में उनका समर्थन मांगेंगी। सांसदों और विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुर्मू विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही हैं और इस समय वह अपने गृह राज्य ओडिशा में प्रचार कर रही हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि वह शनिवार को पूर्वाह्न 10 बजे कोलकाता पहुंचेगी। भाजपा के एक नेता ने कहा, बाद में वह दिन में न्यू टाउन इलाके के एक होटल में भाजपा के सांसदों एवं विधायकों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि बहरहाल उनकी विधानसभा जाने या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की अभी कोई योजना नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि उन्हें विधानसभा का दौरा करने की मुर्मू की किसी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र में अब असली और नकली शिवसेना को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। दरअसल ज्यादातर विधायकों के एकनाथ शिंदे के साथ जाने के कारण अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों को पार्टी सिंबल को लेकर डर सता रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार जनता को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना बीएमसी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और बागी विधायकों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि आज विधानसभा चुनाव कराएं। अगर हमने गलत किया तो लोग हमें घर भेज देंगे, और अगर आपको यही करना था तो आपको इसे 2.5 साल पहले करना चाहिए था और यह सम्मान पूर्वक हो गया होता। ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बता दें कि ठाणे के 67 में से 66 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दे दिया, जबकि नवी मुंबई के 32 पार्षदों ने भी एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। पार्षदों का कहना है कि शिंदे आसानी से उपलब्ध रहते हैं। वहीं शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।